बिन रोए आंसू पार्ट 5। पूरा नॉवल सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और यूनिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस वक्त पर मिली जा सकें। शुक्रिया। इर्तज़ा बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था। उसे कभी तफरीहन लड़कियों के साथ वक्त गुजारने का शौक नहीं रहा था। उसके लंदन से वापस आने के बाद से अम्मा मुसलसल उसके पीछे लगी हुई थी कि वो शादी के लिए किसी लड़की का इंतखाब कर ले। उनकी ख्वाहिशात और खुशियों का एहतराम अपनी जगह, वो इतनी जल्दी शादी करने के मूड में नहीं था। वो पापा और डैडी के साथ मिलकर अपने बिजनेस को मजीद फैलाना और बढ़ाना चाहता था। खैर ऐसा भी नहीं था कि उसने कभी लड़की के बारे में सोचा ही नहीं था। जिसे वो अपनी शरीके सफल बनाने का फैसला करता वो खूबसूरती से मुतासिर होता था, मगर सिर्फ उससे मुतासिर होकर वो किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता था। उसकी जिंदगी में आने वाली लड़की के पास खूबसूरत सोच, खूबसूरत जहन और खूबसूरत दिल होना चाहिए था। खूबसूरत चेहरा चाहे हो या ना हो, लेकिन शादी से उसका ये इनकार उस रोज धरा का धरा रह गया जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो समन से मोहब्बत करने लगा है। वो लड़की अचानक उसकी जिंदगी में आई और बस हर जगह छा गई। वो जो हर काम बहुत सोच समझकर और जज्बात को असाब पर सवार किए बगैर करने का आती था, उसे समन से बस एकदम मोहब्बत हो गई। वो अचानक ही उन सब की जिंदगी में चली आई थी, मेहमान की हैसियत से आने वाली अजनबी सी समन और इस लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। तब वो इन लोगों को पराया समझकर दूर दूर रहती थी, अब जब इस घर को अपना मानकर यहाँ रहने लगी तो इर्तज़ा को पता चला कि समन का दूसरा नाम मोहब्बत है। उसे खालिक ने मोहब्बत की मिट्टी से तख्लीक किया है। वो मोहब्बत करने और मोहब्बत बांटने के लिए ही बनी है। घर वालों की तो बात क्या थी, उनसे तो उसका खूनी रिश्ता था। उसे तो रास्ते में कचरा चुनते और भीख मांगते बच्चों तक से मोहब्बत हो जाया करती थी। वो जहीन थी, समझदार थी, मैच्योर थी, वो अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदार थी। उसकी बहुत सी बातें इर्तज़ा जैसी थी। इर्तज़ा उससे बेहद मुतासिर था। खुद में मौजूद इतनी सारी खूबियों के बावजूद उसमें एक बेनियाजी थी, अपनी खूबियों से बेनियाजी। उसे जैसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत है, जहीन है, दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। उसकी खुद अपने आप से ये बेनियाजी और लापरवाही इर्तज़ा की नजरों में उसकी खूबियों को कई गुना बढ़ा गई थी। फिर कुछ और वक्त गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ समन की खूबियों से मुतासिर नहीं है, बल्कि वो इससे मोहब्बत करने लगा है। मोहब्बत का ये इंकिशाफ कितना अचानक हुआ था उस पर, और जब उस पर इस मोहब्बत का इंकिशाफ हुआ तो उसे उस मोहब्बत पे बहुत फख्र महसूस हुआ, इसलिए कि इसने जिस लड़की से मोहब्बत की थी वो वाकई इस काबिल थी कि उससे मोहब्बत की जाए। समन के लिए अपनी दीवानगी खुद उसके लिए बहुत हैरत अंगेज थी। उसे यूनिवर्सिटी से लाने की खातिर वो अपनी जरूरी से जरूरी अपॉइंटमेंट तक कैंसिल कर दिया करता था, मगर वो लड़की उसकी दीवानगी से अनजान वैसे ही बेनियाज थी। वो इसके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करती थी, लेकिन इनमें अभी तक वही पहला वाला तकल्लुफ और दूरी हायल थी। कभी उसका दिल चाहता कि वो समन से पूछे, समन क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं, या फिर तुम जानबूझकर बेनियाजी जाहिर करती हो? मेरी आंखों में लिखा पैगाम तुम क्यों नहीं पढ़ पाती? उसकी बेकरारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। फिर यूं हुआ कि उसने इर्तज़ा की आंखों में मौजूद पैगाम पढ़ना शुरू कर दिया। वो बराह रास्त उसकी निगाहों में देखने से कतराने लगी। उससे बात करते करते वो उसकी निगाहों की वारफ्तगी देख कर यकदम चुप हो जाया करती थी, लेकिन इस गरेज इस खामोशी में उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा इकरार छुपा होता था। वो इस रात सोने से पहले अम्मा के कमरे में आ गया। अम्मा उसके लिए बिल्कुल माँ की तरह थी। उसे उनसे बात करते हुए कभी लफ्ज इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बगैर हिचकिचाहट के उनसे अपने दिल की बातें किया करता था। अम्मा आप चाहती हैं ना मैं शादी के लिए हाँ कर दूं?
ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, तुम्हारी शादी तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान है। जिस लड़की को तुम पसंद करोगे हम सब उसे दिलो जान से कबूल करेंगे।
उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से जवाब दिया।
मेरी पसंद वो लड़की है जो आप सबको भी बहुत पसंद है। मैं समन की बात कर रहा हूँ अम्मा, मैं समन से शादी करना चाहता हूँ। उसके मुंह से समन का नाम सुनकर अम्मा को बेतहाशा खुशी हुई। उसने उस लड़की को पसंद किया था जिससे उसकी शादी इस घर के हर फर्द का अरमान थी। अम्मा पापा डैडी और मामा सब के सब इर्तजा की समन के साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे। दिल की ये ख्वाहिश उन्होंने आपस में एक दूसरे के सामने जाहिर कर दी थी, लेकिन इर्तजा समेत बच्चों में से किसी के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था कि अगर इर्तजा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो खामखा आपस में दिल बुरे होंगे। लेकिन उसने तो वही बात कह दी थी जो सबकी दिली तमन्ना थी। अम्मा ने सुबह का इंतजार बड़ी ही मुश्किलों से किया था। सुबह होते ही उन्होंने बाबा डैडी और मामा को इस बात से आगाह किया। थोड़ी ही देर में घर के तमाम अफराद को इस बात का पता चल गया था। मामा ने समन की रजामंदी लेने के बाद अम्मा को बकायदा इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। उसी दिन रिश्ता दिया गया, उसी दिन रिश्ता तय हुआ और उसी दिन मंगनी की तारीख भी तय कर ली गई। सफर के अमेरिका जाने में सिर्फ 4 दिन रह गए थे। उसके जाने से एक दिन पहले मंगनी की तकरीब होनी थी। वक्त बहुत कम था और अम्मा नहायत धूमधाम से तकरीब करना चाहती थी, इसीलिए घर में खूब भगदड़ मची हुई थी। इर्तजा के लिए ये सब एक हसीन ख्वाब की तरह था। कौन कहता है मोहब्बत हिजर है, नारसाई है, दुख है, आंसू है? गलत, बिल्कुल गलत, उसने खुद से कहा। मोहब्बत करने वाले को हमेशा ही तो पुल सिरात का सफर तय नहीं करना पड़ता, कभी कभी सब कुछ मनचाहा भी तो हो जाया करता है, बिल्कुल उस तरह जैसे मेरे साथ हुआ। वो हासिद नहीं थी, कमजोर नहीं थी जो अपनी बहन की खुशियों से जलती। वो उसकी खुशियों में खुश होने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को इर्तजा की परसों पहले की बात याद दिलाई थी। जरूरी नहीं जब जो मैं चाहूं वो मुझे मिल जाए, कभी मेरे बहुत चाहने पर भी मुझे मेरी पसंदीदा चीज नहीं मिल जाती और मुझे उसे नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए।
मैं आप जैसी हकीकत पसंद और मैच्योर नहीं, कैसे मान लूं कि जो मैंने चाहा वो मेरे बजाय किसी और को मिल रहा है?
उसने स्टेज पर बैठे इर्तजा की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए समन से कुछ कह रहा था।
मुझे यकीन नहीं आ रहा सबा, क्या मोहब्बत करना और उसे पा लेना इतना ही आसान होता है?
समन खुशी की इंतहा पर पहुंचकर बेयकीनी से पूछ रही थी।
नहीं, ये सब इतना आसान नहीं होता, सिर्फ चंद खुश नसीब होते हैं जिन्हें मोहब्बत हासिल हो जाती है और तुम इन खुश नसीब लोगों में से एक हो, वो बस सोच कर रह गई थी।
समन के पास आज बोलने के लिए बहुत कुछ था, वो बेतहाशा खुश थी। कितनी देर तक वो इसके साथ आज के इस खुशियों भरे यादगार दिन के हवाले से बातें कर रही थी। बातें करते करते समन सो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। आसमान पर जगमगाता चांद उसे उससे पहले इतना तन्हा कभी नहीं लगा था।
तुम तन्हा हो इसलिए इतने उदास हो, उदास मत हो, देखो मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल तन्हा हूँ।
वो खामोश खड़ी चांद से बातें कर रही थी। वो सब लोग एयरपोर्ट पर सफर को सी ऑफ करने आए थे। जैसे ही तस्वीरें आए फौरन मुझे भेजना, सफर ने समन के आंसू साफ करते हुए कहा। अम्मा आपने देखा सबा को? उसने इस मामले में फिर मेरे साथ नाइंसाफी की है।
मुर्तजा के लंदन जाने पर ये कैसे फूट फूट कर रोई थी और आज देखें कितने मजे से खड़ी है। वो जाते जाते भी उसे चिढ़ा रहा था, उसके ताना देने पे सब हंस पड़े थे, यहाँ तक कि समन भी रोते रोते हंस पड़ी। सबको खुदा हाफिज कहकर वो आगे बढ़ा। दो कदम आगे बढ़कर उसने गर्दन मोड़कर सब की तरफ देखा तो उसकी नजरे सब पर से होती हुई सभा पर आके ठहर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बिल्कुल खामोशी से उसे देख रही थी। वो एकदम पलटकर वापस आया। अरे सभा, मैं मजाक कर रहा था, उसके पास आकर बोला।
सफर भाई, आप जल्दी वापस आएगा, अब आप इर्तिजा भाई के साथ कोई गेम खेलेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी,
वो रोते हुए उसे यकीन दिला रही थी। जफर अपने हाथों से उसके आंसू साफ करने लगा। जफर के जाने पर उदासी और खुशी के मिले जुले जज्बात लिए वो लोग घर वापस आ गए थे। शाम तक सब यूं ही कुछ खामोश खामोश से रहे। इर्तिजा समन को डिनर कराने बाहर ले जा रहा था। सबा तुम भी चलो, इर्तिजा ने ऑफर की। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, इखलाकन मुझे साथ चलने को कह रहे हैं। अगर मैं वाकई चलने के लिए तैयार हो गई, तो दिल ही दिल में मुझे गालियाँ देंगे, फिर मरवतन आप दोनों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा और मेरी वजह से आप लोगों को आपस में इंतहाई अलमकाना गुफ्तगु करना पड़ेगी। हो सकता है फिर आप उसे पाकिस्तान की फॉरन और इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कस करें और ये आपको गोभी के फूल और गेंदे के फूल के दरमियान मौजूद बुनियादी फर्क समझाने लगे। उसके मुंह फाड़ से अंदाज पर इर्तिजा कहका लगा कर हंस पड़ा, जबकि समन अम्मा की मौजूदगी की वजह से पूरी तरह झीम गई थी। खुद अम्मा के लबों पर भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट तोड़ गई थी। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, वो केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रही थी। वो और समन यूनिवर्सिटी एक साथ जाया करती थी। उसने अपने जेन से सब सोचों को छिटक कर खुद को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया था। वो अब अकेले में भी नहीं रोती थी, उसने जैसे इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। दुनिया में इर्तिजा कंसनफर ही तो एक अकेला अच्छा शख्स नहीं, उस जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे मर्द इस दुनिया में मौजूद हैं। उसे समन पसंद है तो ठीक है, वो क्यों बेकार में खुद को हलकान करे। ऐसे शख्स के बारे में सोच सोच कर वो क्यों उदास होती रहे, जिसे इससे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। उसने इर्तिजा कंसनफर के साथ अपनी यक तरफा मोहब्बत को हमाकत करार देकर खुद को मजीद इस हमाकत में मुब्तला रहने से रोक दिया था। रात के खाने के बाद वो सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे। समन सबके लिए कॉफी बना के ले आई। इर्तिजा का गर्चे आजकल कराची में क्याम बहुत मुख्तसर होता था, फिर भी इस मुख्तसर से वक्त में समन की कोशिश होती थी कि वो उसे उसकी पसंद की डिशेस बनाकर खिलाए, रात में उसे कॉफी बनाकर दे। वो इर्तिजा के पीछे लग लग कर उसे पूछती कि वो क्या चीज खाना चाहता है। सबा को अब उसके लिए कॉफी बनाने और नाश्ता देने की जरूरत नहीं रही थी, उसकी उन सब जरूरतों का ख्याल रखने के लिए समन काफी थी और सबा को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। इर्तिजा ने कप उठाकर पहला घूंट लिया और फौरन बोला, कॉफी अच्छी है समन, लेकिन इसमें वो बात नहीं जो सबा के हाथ की बनी हुई कॉफी में होती है। उसके इस साफ को अंदाज का समन ने जरा भी बुरा नहीं माना था। वाकई सबा अच्छी कॉफी बनाती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उसके जैसी मजेदार कॉफी नहीं बना पाती, उसने बरमला इतराफ किया था। अच्छा खाना बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन अच्छी चाय और अच्छी कॉफी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, वो बड़े मूड में उसकी तारीफ करते हुए अब बाबा की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। बाबा ताईदी अंदाज में मुस्कुराते हुए खुद भी कुछ कहने वाले थे। वो खामोशी से बैठी कॉफी पी रही थी, उसे अपनी इस तारीफ पर कोई खुशी नहीं हुई थी। बच्चा समझकर की जाने वाली अपनी उन तारीफों पर अब उसे कोई खुशी नहीं होती थी। उसने इर्तिजा कंसनफर के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो उसके कराची में होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाया करती थी। उसका दिल चाहता था कि वो एक दो दिन के लिए भी कराची ना आए।
اس کی غیر موجودگی اسے بہت سکون پہنچاتی تھی۔ وہ جب یہاں آتا تو اسے دیکھ کر ہر لمحہ اسے ایسا لگتا جیسے اس کی کوئی بہت اپنی چیز جس کی وہ مالک تھی، جسے وہ کسی اور کو دینے کا مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی، مسلسل اسے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ بے بسی سے کھڑی اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی ہے۔ اپنی اس سوچ پر وہ خود کو سخت ملامت کرتی، خود سے خفا ہو جاتی تھی۔ اسے اس شخص کی قطن پرواہ نہیں، وہ سمن سے شادی کرے یا کسی اور سے، اس کی بلا سے۔ سمن کے امتحانوں کے فوراً بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں کئی دن پہلے سے ڈھولک بجنی شروع ہو گئی۔ ان لوگوں کی کزنز اور سمن کی سہیلیاں سب مل کر رات گئے تک ڈھولک بجاتی، گانے گاتی۔ سمن بھی شرمائی شرمائی سی ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھی ہوتی۔ ماما ہر بار سمن کی خوشیوں سے جگمگاتے اور مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہتی اور اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگا کرتی۔ اماں دعا کریں میری بیٹی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اس روز رات کو وہ اماں کے ساتھ کمرے میں ان کے پاس بیٹھی مائیوں کے فنکشن کے بارے میں ان کی مختلف ہدایات سن رہی تھی۔ جب ماما کمرے میں آ کر اماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، ملیحہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرنے کے علاوہ اب میرے پاس زندگی میں اور ہے ہی کیا۔ انہوں نے ماما کا ہاتھ اپنے بوڑھے اور کمزور ہاتھوں میں لے کر بہت محبت سے کہا۔ وہ کمرے میں آئی تو سمن جاگی ہوئی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ بالوں میں سے بینڈ نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر اچھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ چند دن رہ گئے ہیں تمہارے ساتھ اس کمرے میں گزارنے کے لیے، میں ان دنوں میں سونے کی بجائے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، سمن کچھ اداسی سے بولی۔ وہ چوٹی کھول کر بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئے بیڈ پر آ گئی۔ صبا تمہارے اس کمرے میں میں نے اپنی زندگی کا بہت خوبصورت دور گزارا ہے، یہاں بے شمار مرتبہ تم نے میرے آنسو صاف کیے، مجھے جینے کا حوصلہ دیا، اور یہی میں نے اپنی زندگی کا سب سے حسین خواب دیکھا، پھر اب اپنے اس حسین خواب کی تعبیر پاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو بہنے لگے۔ پاگل ہو تم، کون سا رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر میں جانے والی ہو جو یوں رو رہی ہو؟ تمہیں یہ کمرہ پسند ہے تو یہ تم اور ارتضا بھائی لے لو، اور ارتضا بھائی کا کمرہ میں لے لیتی ہوں۔ اس نے ہاتھوں سے اس کے آنسو خشک کرنے چاہے تو اس کے کندھے پر سر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ اہمیت کمرے کی نہیں، تمہاری ہے صبا شفیق کی، میری بہن کی، میری سب سے اچھی دوست کی، میں تمہیں بہت مس کروں گی صبا۔ وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ تم نے کیا ہے صبا، میں تم سے کچھ بھی چھپا نہیں پاتی، میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ وہ اس سے محبت کا واہلہانہ انداز میں اقرار کر رہی تھی اور صبا کے اندر دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس محبت کے لائق نہیں سمن، آسمانی رنگ کا شرارہ پہنے، بہت نفیس سی جولری اور مہارت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے لمبے سلکی بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا، بالوں کے بیچ سے مانگ نکال کر جو نازک سا ٹیکا اس نے ماتھے پر سجایا تھا اس سے اس کی تیاری کو مزید دلکشی عطا کی تھی۔ صبا تم لڑکے والوں کی طرف سے ہو یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ ظفر شادی سے 5 دن پہلے آ گیا تھا اور آتے ہی اس نے شادی کے بہت سے کام اپنے ذمے لے لیے تھے، لیکن صبا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ میں لڑکے والی بھی ہوں اور لڑکے والی بھی، میں لڑکے والی بھی ہوں اور لڑکی والی بھی۔ سمن اس غدار کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت نے یہ تمہیں ہری جھنڈی دکھا کر دلہا کی گاڑی میں بیٹھ کر بارات کے ساتھ آئے۔ سارے فنکشن بڑی اچھی طرح ہو گئے تھے، شادی کے دن بھی وہ بڑی متحرک سی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ دلہن کی بہن کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، وہ الگ ہی نظر آ رہی ہے، اسما نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے تعریف کی۔ आज का दिन तो बस सभा का है, उसके आगे हम सब की तैयारियाँ बिल्कुल फजूल नजर आ रही हैं। वैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें दुल्हन की बहन कहें या नंद। उसके कमेंट्स पर बाकी सब कजन्स हंस पड़ी। वो खुद भी मुस्कुराते हुए पापा की बात सुनने चली गई। उसके पास अपनी कैफियतों का तजिया करने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन इतना अंदाजा तो उसे था कि भरी महफिल में तन्हा होने की ये कैफियत आज सुबह से उसे अपनी लपेट में लिए हुए थी। उसे रोना आ रहा था, उसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप जाए और सबसे छुप कर बहुत सा रोए। नका के वक्त समन के एक तरफ अम्मा और एक तरफ मम्मा बैठी थी, वो खुद भी समन के करीब ही खड़ी थी। जिस वक्त समन ने नका नामे पर साइन किए, उसने अपने इर्द गिर्द सन्नाटा फैला महसूस किया। उसे एकदम लगा जैसे वो किसी रेगिस्तान में तन्हा खड़ी है, कहीं कोई आवाज नहीं, दूर दूर तक कोई अपना नहीं, वो बिल्कुल तन्हा है। कोई उसके रोने पर मुतहजब नहीं था, ना उसके बराबरी में खड़ी किसी कजन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। समन को स्टेज पर लाकर इत्तेजा के साथ बिठा दिया गया था। उन दोनों को साथ बैठा देखकर उसे आज भी बिल्कुल वैसी ही तकलीफ हुई थी जैसे पहली मर्तबा इस बात का एहसास होने पर हुई थी कि इत्तेजा गजनफर जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो सबा नहीं बल्कि समन है। वो अपने आप से लड़ रही थी, खुद को सरजनिश करते हुए आंसुओं को बार बार पीछे धकेल रही थी। मुख्तलिफ रस्मों और तस्वीरों और मूवी के लिए उसे बार बार आवाजें दी जा रही थी। वो स्टेज पर गई और इर्तिजा के मुस्कुराते हुए चेहरे पर उसकी नजर पड़ी तो उसे पता चला जिस शख्स की मोहब्बत उसके दिल से कभी नहीं निकल सकती। वो स्टेज पर गई और इर्तिजा के मुस्कुराते हुए चेहरे पर उसकी नजर पड़ी तो उसे पता चला इस शख्स की मोहब्बत इसके दिल से कभी नहीं निकल सकती। वो ला तालुकी और बेनियाजी का होल जो इतने दिनों से उसने खुद पर चढ़ा रखा था सब छटक गया। वो सब के साथ साथ खुद को भी धोखा देती रही थी। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है समन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसे इस लड़की से आज फिर से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। सबा, समन को उसके कमरे में ले जाओ। घर वापस आकर कुछ देर रस्मात का सिलसिला चला। उनसे फारिग होकर अम्मा ने उसे समन को उसके कमरे में पहुंचाने के लिए कहा था। वो अपनी चंद कजन्स के साथ समन को लेकर उसके कमरे में आ गई। उसे इस फूलों भरी सेज पर बिठाते वक्त उसके दिल को नाकाबिले बयां तकलीफ हुई। उसका दिल चाह रहा था इस सजे सजाए कमरे को उजाड़ दे, सुर्ख गुलाबों और मोतिये के फूलों से महकती हुई तमाम लड़ियां नोच दे, इस कमरे में चारों तरफ बिखरे उन फूलों को अपने कदमों तले मसल डाले और उन फूलों के दरमियान बैठी उस हसीन लड़की को कहीं गायब कर दे। आज कितने दिनों बाद बेख्तियार फिर उसके दिल से यही जुमला निकला, तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो समन, तुम यहाँ ना आती तो कितना अच्छा होता। सब कजन समन के साथ बातों में मसरूफ थी, वो बिल्कुल चुप थी। कुछ देर बाद वो सब कमरे से निकल आई थी, वो अपने कमरे में आ गई थी। वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी, वो अपनी मर्जी से रो सकती थी, दिल की दुनिया के लुट जाने का मातम कर सकती थी। इतने घंटों से खुद को संभालते संभालते वो थक चुकी थी, खुद पर से इख्तियार करती वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। जितना वो रो रही थी उतनी ही उसकी वहशत बढ़ रही थी। क्यों नहीं मुझे मेरी मोहब्बत मिली जिसे मैंने चाहा, वो किसी और को क्यों मिल गया? ऐसा क्या है समन में जो मुझ में नहीं है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या वो मुझसे ज्यादा इस शख्स को चाहती है? वहशत ज़दा अंदाज में उसने अपना टीका नोच डाला, फिर गले का हार, कानों के बूते वो जुनूनी अंदाज में सब खेच खेच कर उतारती रही। सेवर नोच नोच कर फेंकने से उसे चोट लग रही थी। चंद मिनटों में उसने अपने रूप को उजाड़ डाला था। उसने एक मर्तबा फिर खुद को आईने में देखा और फिर उसी से सर टुका कर
फिर उसी से सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने जो तूने मेरे मुकद्दर में ये लिख डाला? अगर वो मुझे नहीं मिलना था तो फिर उसकी मोहब्बत भी मेरे दिल में ना डाली होती। वो रोते रोते कारपेट पर बैठ गई। क्यों डाली मेरे दिल में उस शख्स की मोहब्बत, क्यों डाली? वो मुझे नहीं मिल सकता था। उससे अपनी चीखें दुबाई नहीं जा रही थी। इस कायनात में इस चीज की कमी आ जाती अगर मुझे मेरी मोहब्बत हासिल हो जाती। कोई अनहोनी ख्वाहिश तो नहीं की थी मैंने। फकत एक शख्स जो जिस तरह समन को मिल गया उसी तरह मुझे भी तो मिल सकता था। वो रोते रोते उठकर बाहर बालकोनी में आ गई थी। उसका वजूद शोलों की लपेट में था और शोलों को बाहर की ठंडी हवा और भड़का रही थी। जब मैं नहीं तो समन भी क्यों? उसके अल्लाह से शिकवे खत्म नहीं हो रहे थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि समन भी उस रोज अंस मामू और ममानी के साथ उसी प्लेन में होती? क्या फर्क पड़ जाता अगर समन भी उन लोगों के साथ मर जाती? तेरे अख्तियार में तो था, तू ऐसा कर सकता था, मार सकता था ना, तो समन को वो मर जाती, फिर ये सब ना होता जो आज हुआ। वो आज उस शख्स की दुल्हन बनी बैठी है जिसे मैंने अपनी जिंदगी से भी बढ़कर चाहा है, जिसके ख्वाब देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। अपनी जिंदगी के इतने बरसों तक जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की उसे समन ने मुझसे छीन लिया। वो आज फूलों में गिरी उस जगह पर बैठी है जिस जगह बैठने के लिए मैंने ख्वाब देखे थे। उसकी आंखों से आंसू नहीं, लहू टपक रहा था। काश तुम मर जाती समन, उसी रोज उसी जहाज। वो वहशत भरे अंदाज में रोई चली जा रही थी। इस बारे में वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। मुंह हाथ धोकर बाल बनाने के बाद कमरे पर एक मुतमईन सी नजर डालती वो बाहर आ गई। उसकी रोई हुई सुर्ख आंखें देखकर किसी को तशवीश नहीं होगी, इतना तो उसे इत्मीनान था। क्या अजीब इत्तेफाक था कि बाहर निकलकर उसकी पहली नजर इत्तेजा पर पड़ी। वो अम्मा के कमरे में जा रहा था, उसने सबा की तरफ नहीं देखा था। ये इर्तजा गजनफर तुम्हारा बहनोई है, तुम्हारी बहन का शोहर, रिश्ते बदल गए हैं सबा शफीक, तुम्हें इस तब्दीली को कबूल करना होगा, उसने अपने आप को समझाया। वो मुलाजमीन को साथ लगाए घर में ठहरे हुए मेहमानों के नाश्ते का इंतजाम करने में मसरूफ थी। उसकी कजन्स भी मदद करवाने किचन में आ गई। समन तुम्हारा पूछ रही है, वो सुबह से समन के कमरे की तरफ नहीं गई थी, जबकि बाकी सब कजन्स उससे मिलकर और मुंह दिखाई में क्या मिला किस्म के मामला लेकर आ चुकी थी। जरा नाश्ते से फारिग हो जाएं सब, फिर जाऊंगी समन के पास। वो खुद में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कैसे देख पाएगी वो उसके चेहरे की खुशी, वो मोहब्बतों का यकीन पा लेने के बाद बहुत सी खुशी और जगमगाहट। छोड़ो इसे, यहाँ इतना कोई खास काम नहीं है, समन बार बार तुम्हारा पूछ रही है, जाओ इसके पास। समरा जो अभी अभी समन का मेकअप करके आई थी उसके हाथ से मिठाई की प्लेट लेते हुए बोली। एक गहरी सांस लेकर वो किचन से बाहर आई और मरे मरे कदमों से चलते हुए उसके कमरे में दाखिल हुई। समन इस वक्त कमरे में अकेली थी, लेकिन पा लेने के बाद बहुत सी खुशी और जगमगाहट। छोड़ो इसे, यहाँ इतना कोई खास काम नहीं है, समन बार बार तुम्हारा पूछ रही है, जाओ इसके पास। समरा जो अभी अभी समन का मेकअप करके आई थी उसके हाथ से मिठाई की प्लेट लेते हुए बोली। एक गहरी सांस लेकर वो किचन से बाहर आई और मरे मरे कदमों से चलते हुए उसके कमरे में दाखिल हुई। समन इस वक्त कमरे में अकेली थी। रंग की पशवाज, चूड़ीदार पजामे और बहुत बड़े सुर दुपट्टे के साथ वो हमेशा से ज्यादा हंसी लग रही थी। खामोशी पर बेड पर बैठी हुई वो यूं लग रही थी जैसे कोई मलका अपने तख्त पर बैठी हो। उसकी चोटी आगे पड़ी हुई थी और उसमें गंदरी बेले की कलियां किस कदर खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर खुफगी के इजहार के तौर पर वो बिल्कुल चुप बैठी रही। वो उसके पास आकर बेड पर बैठ गई।
वो दोनों खामोश थीं, लेकिन इस खामोशी को समन ने तोड़ा था। उसकी नजर उसकी रोई हुई आंखों पर पड़ी तो बेचैन होकर बोली,
सबा तुम रोई थी?
इतनी तश्वीश और परेशानी थी उसके अंदाज में कि वो यकटक उसकी तरफ देखती रह गई।
बेवकूफ, मैं तुम से कोई दूर तो नहीं जा रही जो तुम इतना रोई, मैं यही हूँ तुम्हारे पास।
उसने उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब बिठा लिया।
समन, अगर तुम्हें मेरे रोने की असल वजह पता चल जाए तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी।
उसे उस पल समन से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो खुद भी उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी।
बस सिर्फ मेरा कमरा ही तो बदला है और तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसे तसल्ली देते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी।
समन, तुम खुश हो ना? उसकी तसल्लियां उसे चाबक की तरह लग रही थी, इसलिए घबराकर उसने मौजू बदला। इर्तजा का जिक्र आ जाने पर समन को भी फिर और कोई बात याद नहीं रहती थी, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी।
हाँ सबा, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि अपनी कैफियत का इजहार लफ्जों में कर ही नहीं सकती। बाज दफा लफ्ज कितने छोटे लगने लगते हैं। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बस तुम खुशी से पहले बहुत का लफ्ज जितनी मर्तबा दिल चाहे लगा लो।
बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट समन के चेहरे पर बिखरी हुई थी।
तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
उसे अचानक ही शिकवा याद आ गया।
यार मैं बिजी थी, घर में इतने सारे मेहमान हैं, मामा का तुम्हें पता है ना, कहीं किसी चीज में उन्होंने जरा सी भी कमी देख ली तो समझो मेरी शामत पक्की है। नौकरों पर तो उन्हें भरोसा ही नहीं। वो तफसील से जवाब देते हुए इसका शिकवा दूर करने लगी।
तुमने ये नहीं पूछा कि इर्तजा ने मुझे मुंह दिखाई में क्या दिया है?
उसके शिकवे अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन कितनी अपनाहियत थी उन शिकवों में।
वैसे तो मैं नीचे सब लोगों से सुन चुकी हूँ, लेकिन चलो तुम दोबारा से बता दो, बल्कि दिखा दो।
समन जवाब में कुछ बोलने के बजाय उसकी गर्दन की तरफ देख रही थी।
ये चोट कैसे लगी सबा?
उसके लहजे में फिक्रमंदी थी। वो एक मर्तबा फिर समन से नजरें चुराने पर मजबूर हो गई।
पता नहीं लगी होगी कहीं से, मैंने तो अभी मुंह धोते हुए इसे देखा था।
उसने अपने झूठ को बेनियाजी के पर्दे में छुपा कर आहिस्ता से कहा।
देख लिया था और फिर भी कोई दवाई नहीं लगाई? वो नाराजगी से उसे घूरते हुए उठने लगी।
कहाँ जा रही हो?
तुम्हारे लिए दुआ लेने जा रही हूँ, हद है बेनियाजी की।
उसने समन का हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया।
बैठी रहो, हमारे यहाँ एक दिन की दुल्हन से काम नहीं कराया जाता, मैं अभी जाकर खुद लगा लूंगी।
लगा लूंगी नहीं, अभी फौरन जाकर लगाओ,
वो नाराजगी से बोली तो वो फौरन उठ गई। अपनी उस चोट पर दवा लगाते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या वो शर्मिंदा थी? उसे नदामत हो रही थी, मगर किस से? क्या समझ से या फिर खुद अपने आप से?
मजीद वीडियोस और स्टोरीज के लिए हमारा चैनल यूनिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।